ஓம் சாந்தி. குட் மார்னிங். சுபஹ் சே பஹுத் சாரே ஜ்ஞான் கி அச்சி அச்சி பாத்தே ஹம் லோக் சீக் ரஹே ஹே சமஜ ரஹே ஹே. அபி கா ஹமாரா ஜோ செஷன் ஹே கல்டிவேட்டிங் ரெசிலியன்ஸ் த்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் அவேர்னெஸ். பஹுத் சுந்தர் விஷய ஔர் சாத் சாத் பஹுத் அனுபவி வக்தா ஹமாரே பீச் மே அபி உபஸ்தித் ஹோனே ஜா ரஹே ஹே. தோ ஆப் சபி தியான் சே யே பாதே சுனேங்கே சம்ஜேங்கே ஔர் ஜீவன் மே ஜேசே ஜேசே உதாரேங்கே ஹர் பரிஸ்தி சுனோத்தியோ மே யே பாதே ஹமே பஹுத் மதத் ரூப் ஹோனே வாலி ஹே. ஜீவன் மே ரெசிலியன்ஸ் பஹுத் ஜரூரி ஹே, ஹம் சப் ஜானதே ஹே. கியூகி பரிஸ்தியா ஹமாரே ஹாத் மே நீ ஹோத்தி, லேக்கன் உஸ் பரிஸ்தி மே ஹமாரி ஸ்திதி கியா ரஹே யே ஹமாரே ஹாத் மே ஹோதா ஹே. தோ ஆஜ் யே முக்ய விஷய பர் ஹமாரே ஜோ வக்தா ஹே, மே உன் வக்தாவோ கோ சாதர் நிமந்த்ரித் கர்த்தா ஹூ. சப்ஸே பஹலே ஹமாரே டிஸ்டிங்விஷ் கெஸ்ட் ஹே டாக்டர் மனிஷ் குமார் ஜெய்சல். ஆப் ஐடிஎம் யூனிவர்சிட்டி குவாலியர் சே பதாரே ஹே, ஆப் எச்ஓடி ஹே. ஆப்கா பஹுத் தஹே தில் சே ஹம் ஸ்வாகத் கர்த்தே ஹே. ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே. சாத் மே ஹமாரே எத்லீட் ஹே பிராதா புருஷ்ருத் கிலாரி ஜி. புருஷ்ருத் ஜி ஆப் எத்லீட் ஹே, சைக்கலிஸ்ட் ஹே. ஆப் மும்பை சே பதாரே ஹே. ஆப்கா பி பஹுத் தஹே தில் சே ஹம் ஸ்வாகத் கர்த்தே ஹே. ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே. ஹமாரே அப்னே ஹி ஹமாரி சன்ஸ்தா கி சீனியர் ராஜயோகா டீச்சர் ஆதரணீய ராஜயோகினி பிரம்மா குமாரி சிஸ்டர் கோபி ஹமாரே பீச் மே உபஸ்தித் ஹே. மே சிஸ்டர் கோபி கோ சாதர் நிமந்த்ரித் கர்த்தா ஹூ. கோபி தீதி கா பஹுத் தில் சே ஸ்வாகத் கர்த்தே ஹம் ஜோர்தார் தாலியோ சே உன்கா ஸ்வாகத் கரே. ஔர் ஹமாரே யுவா பிரபாக் கே சீனியர் கமிட்டி மெம்பர் டாக்டர் அசோக் ஜேட்வா ஜி உபஸ்தித் ஹே, உன்கா பி ஹம் பஹுத் தஹே தில் சே ஸ்வாகத் கர்த்தே ஹே. ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே. ஸ்வாகத் கி ஸ்ருங்கலா கோ ஆகே படாதே ஹுயே ஹம் பிரம்மா குமாரி பஹனோ சே நிவேதன் கர்த்தே ஹே கி ஹமாரே சபி டிஸ்டிங்விஷ் கெஸ்ட் கா பி ஸ்வாகத் கரே. பேஜ் ஔர் புக்கே பனாம் புக் சே ஹம் இன் சபி சன்மானிய கெஸ்ட் கா ஸ்வாகத் கர்த்தே ஹே. ஹமாரி பிரம்மா குமாரி பஹனே ஔர் ஹம் தாலியோ சே இன்கா ஸ்வாகத் கர்த்தே ரஹே. ஆஜ் அலக் அலக் ஃபீல்ட் சே ஹமாரே பாஸ் யே கெஸ்ட் அவைலபல் ஹே. ஏக் பத்திரகாரிதா சே ஜுடே ஹுயே ஹமாரே பிராதா டாக்டர் மனிஷ் குமார் ஜெய்சல் ஜி ஹே. தூசரே ஹமாரே எத்லீட் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் புருஷ்ருத் கிலாரி ஜி ஹே. சாத் மே கவர்மெண்ட் ஜோப் ஜோ கர் ரஹே ஹே. ऐसे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी डॉक्टर अशोक जेठवा जी है और हमारी इंटरनेशनल स्पीकर डॉक्टर सॉरी बीके गोपी दीदी भी है. तो हम सभी आज इनसे इनका ज्ञान, इनका नॉलेज, इनकी उपलब्धियां और इनके अनुभव हमारे साथ वो साझा करेंगे और हम सुनेंगे.
சாந்தி. அபி ஹமாரே செஷன் கி ஷுருஆத் கர்னே சே பஹலே ஏக் மினிட் கே லியே हम उस प्रभु परमात्मा की याद में बैठेंगे।
निर्मल हो जीवन अपना तो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना तो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर दे,
आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर दे।
करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल, वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको भूल,
तो भी बिछाना हमको
भूल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल,
शुभ संकल्प
को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल।
ओम शांति, सभी प्यार से बोलो ओम शांति। थैंक यू। अभी आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जो युवा काल में हमारे साथ सबसे ज्यादा रिलेट करता है, कल्टीवेटिंग रेजिलियंस। हम सभी जानते हैं स्ट्रेस का इक्वेशन है, स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो अगर प्रेशर को कम करना है तो किससे डिवाइड करना है? रेजिलियंस से डिवाइड करना है। और रेजिलियंस की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब जीवन में कोई भी चुनौतियां आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, अचानक से कुछ हो जाता है, उस समय पे सबसे ज्यादा जरूरत है रेजिलियंस की। और रेजिलियंस को आध्यात्मिकता से कैसे हम बढ़ाए, ये हमारा आज का सुंदर विषय है। और सभी हमारे बहुत अनुभवी वक्ताएं हमारे बीच में आज उपस्थित है, तो सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं आपको। हमारे अशोक भाई जेठवा जी जो पीएचडी इन केमिस्ट्री है, आप अहमदाबाद में अभी सीजीएसटी में डेप्यूटी कमिश्नर के रूप में कार्यरत है, और ब्रह्मा कुमारी इसके साथ पिछले 27 सालों से 27 ईयर्स से आप जुड़े हुए हैं और ये राजयोगा अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, अनुभवी हैं। साथ में डॉक्टर मनीष कुमार जैसल जी, आप एचओडी है आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर से, उनका मेन जो विभाग है पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, तो आप वहां पे एचओडी के रूप में कार्यरत है। उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से सिनेमा अध्ययन में एमफिल एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही उन्होंने विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों से जनसंचार एवं पत्रकारिता, समाजशास्त्र तथा पॉलिटिकल साइंस में बैचलर की उपाधि प्राप्त की है, डिग्री प्राप्त की है। साथ साथ आपने बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी करवाए हैं, 100 से अधिक प्रशिक्षण सत्रों का संचालन विभिन्न समूहों, छात्रों, महिलाओं, समुदाय, बैंक कर्मी, ग्रामीण एवं बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने पाठशालाएं, कार्यशालाएं ली है। 10 से अधिक एनजीओ के सदस्यों को विजुअल स्टोरी टेलिंग का भी प्रशिक्षण दिया हुआ है। लेखन क्षेत्र में भी आपने महारत हासिल किया है और 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी है, फिल्मों का अंजुमन, मुजफ्फर अली, फिल्म सेंसरशिप के 100 वर्ष खंड 1 और 2, और पूर्वोत्तर भारत की सीने संस्कृति और राजनीति। तो ये बहुत सुंदर 3 पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई है। आप इसके अलावा स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आईचौक, जनसत्ता, अमर उजाला से भी जुड़े रहे हैं और स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी है। तो इनका बहुआयामी अनुभव हम सभी को आज लाभान्वित करेगा। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और हमारे बीच में हमारी आदरणीय सम्माननीय राजयोगिनी सिस्टर गोपी भी उपस्थित है। आप इंटरनेशनल से जुड़ी हुई है, आप बेसिकली यूके से बिलोंग करती है। 49 कंट्रीज में आपने डिफरेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस IYF के रूप में युवाओं के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज आपने की हुई है। जो मिनिस्टर्स काउंसिल होती है UN की, यूथ के लिए जो कार्य करती है, वहां पे भी आपने कार्य किया हुआ है, अपना लेक्चर्स सेमिनार्स दिया हुआ है। प्रेजेंटली आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में पर्यावरण हेल्थ एंड सेफ्टी इनिशिएटिव के तहत जो न्यू बायोगैस सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप करवाने में अहम रोल निभाया है और जो पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बायोगैस प्लांट बनाया गया है, उनमें आपने अहम रोल अदा किया है। तो ऐसी वक्ता हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय गोपी दीदी है, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे एथलीट भाई, स्पोर्ट्स पर्सन, पुरुषरुत खिलाड़ी जी हमारे बीच में है, एकदम हमारे जैसे यंग और स्पोर्ट्स मैन, जिनका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में आपने में अभी आप साइकिलिंग स्पोर्ट्स मैनेजर एंड साइकिलिंग ब्रांड एम्बेसडर एट डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया में आप कार्यरत है। उनकी अचीवमेंट स्पोर्ट्स में जो है, सुपर रेंडोनियर 2020-21, जिसमें 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 600 किलोमीटर की साइकिलिंग आपने की हुई है। बहुत लंबी साइकिलिंग करते हैं आप, जहां पे हम अभी तो थोड़ी सी करते हैं और थक जाते हैं, और आप तो हंड्रेड्स में किलोमीटर्स में आप कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत अपनी जर्नी की थी अल्ट्रा स्टार्टिंग विद डेक्कन क्लिफ हैंगर इन 2021 पुणे टू गोवा रेस। उसके बाद आप फर्स्ट RAAM क्वालिफाइड एट 8th एडिशन ऑफ द डेक्कन क्लिफ हैंगर, 31 hours 18 minutes 19 seconds कंटिन्यूसली आपने ये साइकिलिंग वाला किया हुआ है। बहुत बहुत ऐसी अचीवमेंट्स आपने की है। फर्स्ट प्लेस इन फिनिश एट द ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा 600 किमीस 2022 रेस इन लेह, लेह में आपने फर्स्ट प्लेस लिया है। सेकंड प्लेस फिनिश एट अल्ट्रा स्पाइस 1780 किलोमीटर्स 2023। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारा एथलीट स्पोर्ट्स में आपने अच्छे से योगदान दिया हुआ है। यंग एज में बहुत अच्छे से आप कार्यरत है। तो ऐसी सारी प्रतिभाएं महानुभ हमारे बीच में है, सभी अलग अलग फील्ड से है, तो हमें सभी के अनुभव आज बहुत काम में आएंगे हमारे जीवन में, लाइफ में जब भी चुनौती आएगी तो प्रैक्टिकल अनुभव इनके सब हमें ये अनुभव काम में आएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे जो एथलीट भाई है पुरुषरुत जी, उन शुरू करते हैं। आप में बहुत सारे उपलब्धियां लेकर स्पोर्ट्समैन बनकर, बहुत सारे अचीवमेंट्स लेकर आप यहां आए हैं, तो ये अचीवमेंट लेने में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, कभी फेलियर भी मिला होगा। तो आपके जीवन का वो कोई ऐसा अनुभव आप सुनाइए कि जहां पे आपको ऐसा हुआ कि फेलियर मिला या विपरीत परिस्थितियां आई, और उसके बाद आप उसमें से कैसे बाहर निकले, आपका अनुभव साझा करिए।
गुड मॉर्निंग,
मेरा नाम पुरुषरुत खिलारी। तो जैसे जानक भाई ने पूछा कि मेरा अनुभव कोई फेलियर से राइज अप होने के, इसमें जस्ट पिछले साल ही मैं लद्दाख में फिर से और एक बार 900 किलोमीटर की रेस करने गया था। 600 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट प्लेस 2022 में आने के एक्सपीरियंस के बाद वहाँ पे मेरा जाना हुआ। प्रैक्टिस, परिश्रम, मेडिटेशन और कई सारा बहुत सारा डिसिप्लिन इनकलकेट करके अपने फुल टाइम जॉब वर्किंग के साथ में भी समय निकाल के ट्रेनिंग ये सब करने के बावजूद कभी कभी क्या क्या चीज़ें जो भी होते हैं अच्छाई के लिए ही होते हैं। हर एक का नसीब में कोई ना कोई होता है चीज़ होता है। तो जैसे ही मैं लेह लद्दाख में मेरा पहुंचना हुआ पिछले साल अगस्त में, सारी प्रैक्टिस राइड्स मेरी करके हुई थी। रेस के 3 दिन पहले ही मुझे बहुत बुखार आने लगा। 2 से 3 बार टैबलेट्स लेके भी मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन बाद मुझे पता चला कि मलेरिया डिटेक्ट हुआ है। तो आप ही सोच सकते हो, आप पूरा साल भर एक इवेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके पिछले सालों के भी आपका परिश्रम है उतना, ट्रेनिंग उस लेवल पे जहाँ पे चलने पर भी सांस फूलती है, वहाँ पे 900 किलोमीटर की रेस करने का हड़स जुड़ाने प्रैक्टिस करके भी वहाँ पे जाने। तो ये रेस जब चालू होने के स्थान में, पर तो भी आत्मबल कभी ऐसा कम होने नहीं दिया। वहाँ पे भी हॉस्पिटल चिंतन करता था कि मैं ये रेस कर सकूँ, तो वो रेस मैं कर नहीं पाया। जैसे मैंने कहा, नसीब में मेरा शायद से और कुछ था उस समय, तो वो एक मेरे लिए आज तक एक सबसे बड़ा सेटबैक रहा है कि पूरी तैयारी करके मैं कोई रेस स्टार्ट नहीं कर पाया। अभी मैं नसीबवान हूँ कि जितने भी सारे इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैं सारे फिनिश कर पाया या तो मैं पोडियम ला पाया। ये एक छोटा सेटबैक मेरे लिए आज तक रहा। छोटा मत, अभी मैं छोटा कह रहा हूँ, बट उस क्षण में मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। आप ही सोचिए, अगर आप मेरे जगह पे होते, आप पूरी साल भर की तैयारी की है, उसके पहले पहले भी कई सालों का परिश्रम आपका है, आपने छुट्टियाँ अप्लाई की हुई है, पूरे साल भर की ऑलमोस्ट छुट्टियाँ एक साथ, आप परिवार को भी साथ में लेके आए, मम्मी पापा वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, और ऐसी जगह की जहाँ पे आपको थोड़ा भी ट्रैवलिंग करना हो वहाँ पे भी कई कठिनाइयाँ आए, तो मेडिटेशन और खुद का आत्मबल, खुद पर विश्वास करके उस समय पे मैंने खुद का मोटिवेशन डाउन होने नहीं दिया। तो कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस पे होता भी है, इतना बड़ा सेटबैक उस समय पे मुझे लग रहा था, पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि उस समय मैं मेडिटेशन कर रहा था, सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में मैंने रखा था, कि पॉजिटिविटी मैंने उस सेटबैक में से भी देखा, कि जिसकी वजह से आज उसके बाद भी मैं कई सारे इवेंट कर पा रहा हूँ। तो ऐसे देखा गया तो अभी ही 3 हफ्ते पहले मैंने मेरे दोस्त के साथ, जिसे अपने अंतर सुने मेरे 1780 किलोमीटर के रेसेस ये सब, तो मैंने मेरे दोस्त के साथ 200 किलोमीटर का एक इवेंट किया हाल ही 3 हफ्ते पहले। ये मुंबई से लेके इगतपुरी और फिर से मुंबई था, पर इसमें खास चीज ये थी कि जैसे मुझ में एबिलिटी है साइकिलिंग करने की, वैसे ही मेरे दोस्त के पास स्पेशल एबिलिटी है, तो मेरे दोस्त को दिखाई नहीं देता। तो हमने ये जो साइकिलिंग किया 200 किलोमीटर, ये एक डबल साइकिल के माध्यम से किया, कि एक साइकिल जिसपे 2 सीट, आगे मैं चला रहा, हम दोनों चला रहे, मैं और मेरा दोस्त साथी, हैंडलिंग, हैंडल टर्न करना, ब्रेक करना, गियर शिफ्ट करना हाथ में मेरा, तो हम दोनों का तालमेल से ये एक, हम दोनों दोस्तों, हम दोनों के लिए भी काफी बड़ी चीज हुई। तो ऐसा अभी तक रहा।
चुनौतियां तो आती है और आएगी भी, उसको हम रोक नहीं पाएंगे, परिस्थिति आएगी। लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जो पुरुषरुद्ध भाई ने बताया कि मैं मेडिटेशन करता था, पॉजिटिव थॉट्स जो थे उन्होंने इनको बहुत मदद की, जिसकी वजह से आज फिर से वो अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने कार्य भी किया कि दोस्त के साथ मिलकर लंबा सफर तय किया अपनी साइकिल पे। तो ऐसी ही सफर लेकर हमारे बीच में डॉक्टर अशोक जेठवा जी उपस्थित है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो एक गुजरात का छोटा सा कस्बा है, वहां से निकलकर आपने पीएचडी केमिस्ट्री में किया है और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के साथ भी पिछले 27 सालों से जब जुड़े हैं, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल किया है उसमें कभी ऐसा क्षण भी आया होगा जब आपको लगा कि अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे सवाल आए होंगे, टेंशन आया होगा, स्ट्रेस आया होगा। उस परिस्थिति को आप अपना अनुभव साझा करें हमारे साथ, क्योंकि हमारे यहाँ के सारे जो भाई बहने हैं, यूथ है, वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड है, सभी प्रोफेशनल यूथ है। तो आप जब गवर्नमेंट में इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचे हैं, तो ये परिस्थितियां चुनौतियां जो आई है उसको आपने फिर हैंडल कैसे किया, उससे बाहर कैसे निकले, वो आपका अनुभव साझा करें।
ओम शांति। तो आज हम रेजिलियंस और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, विशेष करके यूथ लाइफ में ये चीजें हमारे सामने आती है। मेरे सामने विशेष करके आई वॉज इनिशियली स्कूल लाइफ में एवरेज स्टूडेंट, हम लोग कभी 60 को क्रॉस नहीं करते थे, 50 से नीचे नहीं जाते थे, 70 को क्रॉस नहीं करेंगे, 50 से नीचे नहीं जाते थे। बट आफ्टर सर्टेन आफ्टर स्कूलिंग थोड़ा सा एक अवेयरनेस आया और हम लोग 70 को भी क्रॉस करने लगे। सो कॉलेज लाइफ वॉज अच्छा, एक बहुत अच्छा स्टडी का पीरियड रहा। विशेष करके यूथ लाइफ में चैलेंजेस जो आती है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, फिर चैलेंजेस आती है कि फेलियर होता है बार बार। मैंने मोर देन 100 इंटरव्यू या एग्जाम्स दिए होंगे, ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में मैं फेल हुआ, बट हम एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो भाई चलो आज एक एग्जाम दिया या एक इंटरव्यू दिया, यहाँ पर क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ तो हम और अच्छी और बेटर एग्जाम या इंटरव्यू दें। तो इस प्रकार का फेलियर सक्सेस का भी एक्सपीरियंस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस करते हैं, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। मेरे जॉब के इनिशियल स्टेज में ही आई लॉस्ट माई फादर, तो उनका जो एक सपोर्ट था, मॉरल चीजें होती है पेरेंट्स सन और फादर के बीच में, तो वो चीजें ओवरकम करने के लिए स्पिरिचुअलिटी और रेजिलियंस हेल्प करता किया। और चीजें हैं विशेष करके कि आप एक कंसिस्टेंस मेंटेन करें। पीएचडी करना 3-4 साल लगता है, पीएचडी पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करना, तो आई थिंक मैं 26 इयर्स तक या 27 इयर्स तक मैं कुछ नहीं, मतलब आई वॉज नॉट एम्प्लॉयड। तो वैसे समय पर आप एक अपने आप को थमा के रखना, वो चीजें आपको स्पिरिचुअलिटी ही दे सकती है। तो इस प्रकार से यूथ लाइफ में हम पॉवर्टी है छोटा सा, एजुकेशन से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये चीजें अलग अलग प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं उसमें हमें रेजिलियंस या स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करते हैं या किया, तो वो चीजें मुझे काफी मदद किया।
स्पिरिचुअलिटी हमें हर बहुत सारी मदद करती है, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें भ्राता अशोक भाई ने दिया। अभी युवाओं के साथ हर हमेशा काम करने वाले ऐसे हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट एचओडी साहब हमारे बीच में है, मनीष जी, तो वो तो जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं वहां तो हमेशा उनको युवाओं के साथ ही काम करना है, और युवाओं के बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आते होंगे, इंटरेक्शन होता होगा, पूछते भी होंगे कि सर आगे हमारा भविष्य क्या होगा, अगर हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। तो ऐसी जो बातें आपके सामने आती है उस समय आप युवाओं को रेजिलियंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी जो बातें आती है वो बातें भी बताइए, और उस समय युवाओं को रेजिलियंस बढ़ाने के लिए करना चाहिए आप अपने अनुभव साझा करें।
ओम शांति। माउंट आबू आके तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने आप को डिटॉक्स करने यहाँ आता हूँ। दुनिया भर की खबरों के बीच में, दुनिया भर के एक तरीके से जो निगेटिव माहौल है कम करने के लिए, कई हद तक तो पूरा ही खत्म हो जाता है। अगर यहाँ 3 दिन आप रहिए और रहने के बाद आप अपनी दुनिया में जाइए तो आपको खुद अनुभव होता है। सवाल जब क्लासरूम से निकल के आते हैं, आप जैसे युवा हमारे बीच में आते हैं, मैं भी युवा ही हूं, बहुत कम उम्र में ऐसा लगता है कि युवाओं के सवालों के जवाब दे रहा हूं, तो इसलिए भी अपने आप को स्टैब्लिश करना, उनके सवाल के जवाब देना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उनके सवालों के जवाब दे पाता हूं क्योंकि पोजीशन भी हो गई है। मीडिया के छात्र जब सवाल पूछते हैं या किसी और फील्ड के छात्र सवाल पूछते हैं कि हमारा करियर कहां जाएगा, हम क्या करें, तो मुझे सबसे पहला सवाल उनके पेरेंट्स का जो होता है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूं। कई बार पेरेंट्स अपने सपनों को अपने बच्चों पर लाद देते हैं, सवाल वहां से शुरू हो जाता है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। अब बच्चे को नहीं बनना है इनमें से कुछ भी, बच्चे को कुछ और बनना है, उसको हो सकता है परफॉर्मिंग आर्ट में जाना हो सकता है उसको सिंगर बनना हो सकता है उसको गिटारिस्ट बनना हो सकता है उसको स्विमर बनना हो सकता है उसको एथलीट में जाना हो, तब बड़ा संकट शुरू होता है। तब वो छात्र, क्योंकि छात्र है तो क्लासरूम में ज्यादा रहता है तो सवाल अपने टीचर से पूछ सकता है, तब हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं कि तुम्हें करना क्या है बताओ, करियर काउंसलिंग टाइप का एक माहौल मिल देते हैं हम उन्हें कि आप अपने मन का बताओ कि तुम्हें क्या करना है, फोटोग्राफी में जाना है। अब छात्र जो है मीडिया में भी जब आए, उसको भी ये नहीं पता कि मुझे अब मीडिया में भी किस में जाना है क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है, तब उससे बात करते हैं कि फोटोग्राफी में जाना है, आपको ट्रेवलॉगर बनना है, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, या आपको सिर्फ रील बनानी है, या गाड़ी में प्रेस लिखाना है सिर्फ उसके लिए ये डिग्री कर रहे हो, तो उनसे हम संवाद स्थापित करते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का हल संवाद से हल हो सकता है। आप बातचीत नहीं करेंगे, आप अपने मन की बात नहीं रखेंगे तो कोई भी ताकत आपका सलूशन नहीं बता सकती है। तो जब मैं अपने छात्रों के बीच में होता हूं तो वो जब बात करते हैं तो पता चल जाता है कि इसका लेवल या ये इधर नहीं आना चाहता, उसको जाना उधर है। लेकिन पेरेंट्स का भी एक दबाव है क्योंकि पेरेंट्स ने फीस दी है, पेरेंट्स का सपना है उसको डॉक्टर बनाना ही है, कम से कम एक दो बार ट्राई तो करना ही करना है। तब मैं कहता हूं कि पेरेंट्स के खिलाफ मत जाइए, ट्राई करिए और बेटर ट्राई करिए। हो सकता है कई बार मैं देखता हूं कि लल्लन टॉप जैसा बड़ा चैनल, उसमें आप देखिए तो अधिकतर जो पत्रकार हैं वो अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं, तो हो सकता है कॉमर्स का बच्चा जब मीडिया में आए तो वो बहुत अच्छी बिजनेस जर्नलिज्म करने लगे, बिजनेस पत्रकारिता करे, या स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कोई एथलीट बहुत अच्छी रिपोर्टिंग मीडिया पर्सन बन सकता है। तब हम लोग बात करते हैं कि दृढ़ता आप अपने जीवन में लाइए कि मुझे ये करना है, पेरेंट्स जो कह रहे हैं मैं उसको एक बार ट्राई कर लेता हूं, लेकिन मुझे जो करना है मुझे भूलना नहीं है। और इसका खुद नमूना मैं खुद भी हूं क्योंकि मैं खुद भी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद मैंने लाइन चेंज की है घर वालों की वजह से, और घर वाले सुन भी रहे होंगे तो कहेंगे भी, लेकिन अच्छा लगता है जब आप अपने खुद के फैसले पर अडिग रहते हैं और उसको फिर चैलेंज करते हैं कि मैंने आज मैं इस तरीके से ये काम कर रहा हूं। तो दृढ़ता आप लाइए लेकिन निगेटिविटी के साथ नहीं, आप खिलाफ मत होइए पेरेंट्स के, उनका एक सपना है देखा हुआ है, कमी है, थोड़ा साक्षरता की कमी है देश में, हम इसको कई तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आप अनुभव करेंगे, खुद के अनुभव से आप पेरेंट्स को समझाएंगे, वार्तालाप करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे तो हल निकलेगा। किसी ने कहा भी है कि ना हम सफर ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव का काटा हम ही से निकलेगा। तो थैंक यू।
बहुत सुंदर संक्षिप्त में उन्होंने बताया कि दृढ़ता का गुण अपनाकर हमें जो करना है, जो चैलेंज है उसको भी चैलेंज करना है कि नहीं मुझे ये करना है, तो हम अवश्य वो कर पाएंगे। लेकिन साथ में एक इम्पोर्टेंट बात आपने बताई, पॉजिटिविटी के साथ करना है, नेगेटिविटी से बचकर रहना है। अभी परिस्थितियां, चुनौतियां, बाहरी एनवायरनमेंट, आसपास का जो होता है, ज्यादातर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आसपास के लोग, आसपास का जो बन रहा है, जो किससे हम सुन रहे हैं, सब क्या सुन रहे हैं? नेगेटिव ज्यादा सुनते जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमें भी उन्हीं के बीच में रहना है। तो उन सब के बीच में रहते हुए पॉजिटिव कैसे रहना है, ये सारी बातें आज हमें बहुत अच्छे से गौर समझने को मिलने वाली है। क्योंकि आपने देखा, ऋषभ पंत को जानते हैं सब? ऋषभ पंत को कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ खड़े करें। क्रिकेटर है, तो आपको पता होगा कि 22 दिसंबर में उनके साथ बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि जैसे उनको कहा गया कि अभी अनिश्चित है कि आप कभी खेल पाओगे या नहीं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उन्होंने फिर से शुरुआत किया, और अभी हम उनको फिर से खेलता हुआ देख रहे हैं। तो ये जो रेजिल के अंदर, उसकी वजह से वो आज फिर से अच्छे से खेल, अभी रिसेंटली T20 ने उन्होंने शतक भी लगाया है। तो ये रेजिलियंस पावर, रेजिलियंस जिसको हम बोलते हैं, इनर स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो आध्यात्मिकता के साथ जुड़कर हमें कैसे मिलेगी? तो आध्यात्मिकता के ऊपर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में गोपी दीदी है। आपसे हम पहले तो ये सुनना पसंद करेंगे कि आप यूके में रहकर बाहरी देशों में बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़कर, युवाओं के साथ जुड़कर जब ये कार्य करते हैं, तो यहां भारत में, अपने देश में तो स्पिरिचुअलिटी को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन बाहर के देशों में आप जब जाते हैं तो वहां की परिस्थिति क्या होती है, वहां के लोग कैसे इसको एडॉप्ट करते हैं, और आध्यात्मिकता जो रेजिलियंस को बढ़ाने में कैसे मदद रूप होती है सारी परिस्थितियों में, उनके ऊपर आदरणीय सम्माननीय गोपी दीदी जी हमें बताए। गोपी दीदी जी,
ओम शांति। सभी भाइयों को ओम शांति। आप सभी को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यू आर द पल्स ऑफ भारत, और आप जिस धरनी पे आए हैं अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, ये धरनी बहुत शुद्ध और पावन है, और यहां पे आप जो भी संकल्प करेंगे खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति, उस बीज, संकल्प के बीज में बहुत बड़ी शक्ति भरी हुई होगी। तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आता है कि आप सभी के फ्यूचर के लिए, जो आप अभी यहां पे आकर के जो भी कार्य कर रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं, स्व परिवर्तन की प्रेरणा ले रहे हैं, उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। हम बहुत सालों से पूरा विश्व का भ्रमण किया है, और जहां पे भी हमारे सेंटर्स हैं, 120 देशों में हमारे सेंटर्स है, कार्यक्रम है, हालांकि यूथ की एक्टिव सेवा करीबन 50 देशों में है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हर एक देश का अपना अपना सिचुएशन होता है। लेकिन विदेश में वैल्यूज शब्द का बहुत महत्व होता है। जब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ हुआ था तो अपने तरफ से IYF के तरफ से हमने दो बड़े प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे, उसमें से एक जो था ग्लोबल कैफे कॉन्वर्सेशंस ऑन वैल्यूज। और मैंने देखा कि युवा भाई बहनें विदेश में ऐसे क्लासरूम में बैठ करके सीखेंगे नहीं, उनको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी चाहिए। उनके जो भी एनवायरनमेंट है, उनके जो सोशल सर्कल्स है, उसमें चीज इंटीग्रेट करके ही हम उनको सिखा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। फ्रांस में हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो हमारी जो टीम थी युवा भाई बहनों की, उन्होंने मिल करके दे आइडेंटिफाइड 6 to 8 डिफरेंट कोर वैल्यूज दैट द यूथ नीड एट दैट टाइम। फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पेरिस को पकड़ा जो कैपिटल सिटी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी मेन कैफेज है जो मशहूर है जहां पे युवा भाई बहनों सब हैंग आउट होते हैं, दे आइडेंटिफाइड दोज कैफेज। फिर मेयर के पास जाकर के, मेयर ऑफ द सिटी, उनसे बात करके पूरा प्रोजेक्ट बताया कि हमको केवल 2 घंटा चाहिए हर कैफे से, जो हम एक एक वैल्यू को लेकर के, चाहे करेज, चाहे दृढ़ता, चाहे प्यार, चाहे गुड विशेस, तो हम फ्री, एक फ्री इवेंट है और हम सभी युवा को बुलाना चाहते हैं, इनविटेशन देना चाहते हैं, तो हमको आपका सपोर्ट चाहिए। तो मेयर ने एक बहुत अच्छा पत्र लिखा सपोर्ट का, तो पूरी टीम गई, सारे कैफेज में जाकर के पूरे स्लॉट्स फिक्स किए थे कि इस कैफे में ये वैल्यू की चर्चा होगी, इस कैफे में ये वैल्यू इस टाइम से, तो पूरा मेन्यू बनाया था। जैसे आप कैफे में जाते, रेस्टोरेंट में जाते, खाने का मेन्यू बनता है। तो जब उन्होंने एडवर्टाइज किया और कैफे का डेड टाइम होता है दोपहर का 2 से 4 बजे के बीच में, तो उसी टाइम देते थे ऐसे कुर्सियां, आधा कैफे फ्री में देते थे, कुर्सियां बिछाते थे, टेबल्स के ऊपर प्रश्न होते थे। और आप मानो नहीं, इतना सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम कि उनको मेयर से अवार्ड मिला, क्योंकि चारों तरफ से युवा भाई बहने सेंटर में तो नहीं आएंगे लेकिन कैफे में आकर के जो वैल्यूज के ऊपर कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है वो एक जैसे एक माध्यम बनता है उनको अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर जाने के लिए। एंड यू नो, रिजिलियंस इज अ वर्ड दैट बिकम वेरी फैशनेबल, बट आई डोंट बिलीव इन रिजिलियंस। भारतवासीज डोंट नीड रिजिलियंस, दे नीड आत्मविश्वास, बिकॉज द बॉटम लाइन इज दैट कुछ भी है, कोई भी आप, एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर हैज देयर ओन कार्मिक लॉट। आपका कर्म का हिसाब किताब, आपका पर्सनल यूनिक थप्पा है, वो आपके संसार है। एवरीबॉडी हैज देयर ओन कार्मिक लॉट। आपके अंदर जितनी शक्ति भरी हुई है, आपके अंदर जितने वैल्यूज में दृढ़ता है, वो ही प्रत्यक्ष होती है जब सामने से चुनौती आती है या प्रेशर आता है सामने से। आर यू गोइंग टू स्टैंड बाय योर वैल्यूज और आर यू गोइंग टू गिव इन? आर यू गोइंग टू डू व्हाट इज राइट और आर यू गोइंग टू डू व्हाट इज इजी? दैट्स द बॉटम लाइन। कहानियां तो बहुत है हमारे पास, लेकिन इन दिस फील्ड मैंने देखा है, बहुत साल पहले, 30 साल पहले जब युवाओं के इन्वेस्टमेंट होती थी गवर्नमेंट के तरफ से, तो इट वॉज वेरी मच हार्ड स्किल्स डिवेलपिंग यंग पीपल फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, इंडस्ट्रियल स्किल्स। फिर 15-20 साल पहले एक दूसरा माहौल शुरू हुआ जिसमें उन्होंने को पता चला कि वी नीड अनदर लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, जब तक हम ये सॉफ्ट स्किल्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो आपस में संबंध में वो मजबूती नहीं आती है कुछ कार्य को उठाने के लिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति से कार्य नहीं होता है, सर्व के सहयोग से होता है। लेकिन सभी का सहयोग लेना है उसके लिए बहुत सारी ऐसी कलाएं चाहिए। तो वो एक पूरी लहर चली इमोशनल इंटेलिजेंस की, और पिछले मैं कहूंगी 8-10 साल में एक नया चैप्टर खुला है जिसमें भल युवाओं के पास कैपेसिटी भी है लेकिन अंदर की स्पिरिचुअल मोटिवेशन नहीं है, विलिंगनेस नहीं है कुछ कार्य करने के लिए। सो फॉर मी द इश्यू इन भारत इज नॉट अबाउट रेजिलियंस, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल सस्टेनेबिलिटी। अंदर से लेकर के यू कैन डिवेलप योर सेल्फ एट द लेवल ऑफ स्किल्स, अचीवमेंट्स, दिस, बट इफ इंटरनली यू आर नॉट स्पिरिचुअली मोटिवेटेड देन यू कांट ब्रिंग रिन्यूअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और हम कहेंगे जो सूक्ष्म एनर्जी है, आपने अपने दुश्मन को दोस्त बना दिया है, यह है आत्मविश्वास की कमाल। बिकॉज चेंज बिगिन्स एट दैट लेवल, नॉट एट द लेवल ऑफ ट्राइंग टू प्रूव योर फिजिकल स्किल्स। एंड दिस इज वेयर इन द स्पिरिचुअल फील्ड, हम जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री दिया था, और जब हम देखने के लिए गए थे वहां का रहन सहन, वहां का ट्यूटर, क्योंकि वहां एक ट्यूटर सिस्टम चलता है, तभी मुझे अंदर से लगा मुझे यहां नहीं पढ़ना है। मेरा पूरा परिवार थॉट आई वाज क्रेजी कि आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल रही है और आप मना कर रहे हैं। मैंने फिर एक दूसरी यूनिवर्सिटी चूज किया था जो हमारे घर से नजदीक था, जिसमें इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट अच्छा था, और उसमें से 2 साल के बाद एक थोड़ा सा 6 मास का वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो हमने क्रिमिनल लॉ फर्म में 6 मास के लिए हम ज्वाइन हुए थे, और वहां का जो CEO था अच्छा था, लेकिन हर रोज हमको इतने सारे केस पढ़ने होते थे, फिर आप लॉ कोर्ट में जाकर के उसका सार बताना होता था, तो इट्स प्रिटी इंटेंस। और हम देखते थे लॉ कोर्ट्स में द डिसीजन वेंट वेयर द मनी ले, राइट। और बहनों के प्रति, फीमेल्स के प्रति बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, मैंने आंखों से देखा था। तो द CEO टेल्स मी आप में इंटेलिजेंस बहुत है, स्किल्स बहुत है, आप आगे बहुत जा सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते में 2 प्रकार की रुकावट आएंगी, 1 बिकॉज यूर फीमेल एंड 2 बिकॉज यूर एशियन। आई डिडंट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि ये रियलिटी देख रही थी, और मुझे तो नॉनसेंस लग रहा था। मैं तो 8 साल की उम्र से मेडिटेशन कर रही हूं, मुझे इस चमड़ी से क्या मतलब है। 99% ऑफ द आइडेंटिटी क्राइसिस पीपल आर फेसिंग इन द वर्ल्ड इज समथिंग दैट इज ओनली 1/17 ऑफ एन इंच थिक, द स्किन। और जब मेडिटेशन का अभ्यास नहीं होता है, देन एवरीथिंग इज अबाउट दिस, एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। And that is a foundation for very, very weak self-respect. So one of the things is that we have to deeply understand ke sthool ko sukshma chala raha hai. Ye jad cheez hai. Isko chalane wali ek sukshma चैतन्य शक्ति है, और जब तक आपने उस शक्ति को महसूस नहीं किया, आपने अपने पावर को महसूस नहीं किया है. तो ऑन व्हाट बेसिस आर यू क्रिएटिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट? ऑन व्हाट बेसिस आर यू डेमोंस्ट्रेटिंग रेजिलियंस? तो इसीलिए दिस इज नॉट अ वर्ड आई एम फॉन्ड ऑफ, क्योंकि मैं रियलिटी में जब नीचे जाकर के देखती हूं, देर इज अ रियल इश्यू ऑफ अ लैक ऑफ आत्मविश्वास. द बिलीफ इन मी एज अ सटल बीइंग, अ सोल दैट इज फुल ऑफ ऑल वर्च्यूज एंड पावर. ठीक है.
दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया कि सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें पॉजिटिव बनना है, स्ट्रांग बनना है, सफल होना है. और वहां पे ही हम सबसे ज्यादा लैक कर रहे हैं. और जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल एनवायरमेंट भी ऐसा बन रहा है, हमारे आसपास भी यही हो रहा है, तो और हम लो फील करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संग भी ऐसा होता जा रहा है जो हमें और भी ऐसा कुछ ना कुछ शब्द बोल दिया किसी ने आपके आसपास वालों ने, तो और भी हम डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाते हैं. तो ऐसी बातें जब आती है तो हमें कुछ न कुछ ऐसा हमारे लिए डिजाइन करना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा जो हमें ये सारी परिस्थितियों में, चुनौतियों में जल्द से जल्द बाहर निकाले और हमने जो लक्ष्य रखा हो, जो हमारे लिए सफलता है, उसको हम प्राप्त करें. तो हम फिर से हमारे पुरुषरुद्ध भाई को पूछेंगे कि आपने अपना अनुभव साझा किया, अभी डेली रूटीन में आपने ये कोई भी अगर चुनौती आए, परिस्थिति आए, आप तो हर रोज चुनौतियों को चैलेंज कर रहे हैं नए नए लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसके लिए आपने कुछ ऐसा मॉडल बनाया है कि ये चुनौती आएगी तो मैं ऐसे उसको हल कर लूंगा, इससे बाहर निकल जाऊंगा. तो आपने कुछ ऐसा प्लान किया होगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे ये करना है, तो आपने उसके लिए क्या प्लानिंग किया है?
तो जैसे हमने अभी थोड़े समय पहले सुना कि हम हर एक जन यूनिक है. आज के समय में हमें खुद के बारे में सेल्फ टॉक, जब तक हम खुद बात नहीं करेंगे, हम खुद सोचेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी चीज कर नहीं पाएंगे. तो जहां पे सवाल देने की बात आई, तो जब भी मुझे कुछ भी अचीव करना होता है या मेरे शेड्यूल में, मैंने एक चीज हमेशा ध्यान में रखी हुई है कि कोई भी चीज एक अचीव करने के बाद कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सके, उस चीज के बारे में हमेशा मेरा ध्यान उस चीज पर होता है. और आपका प्रोग्रेशन कोई भी फील्ड में, अभी मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा बता पाऊंगा आज के इसमें, कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपके पास कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस माने खुद से बात करने, मेडिटेशन करने, एकाग्रता करने, ये स्किल्स आपने अपने आप में इनकलकेट किया तो आप करियर वाइज या फिर एज अ ह्यूमन बींग बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो. तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि जिसे मैंने स्पोर्ट्स के ड्यूरिंग या पर्सनल लाइफ में मैंने खुद को काम, कंपोज्ड और रिलैक्स रखने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया हुआ है. तो कोई भी चीज में जब इम्प्रूव करना हो, एक सीमा होती है कि आप फिजिकली वहां तक पहुंच पाओगे. आप मेंटल स्ट्रेंथ, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके हाथ में पावर होता है कि कितना हम अचीव कर पाए. ऐसे देखे गए तो फिजिकल स्ट्रेंथ में हमारे बोन्स और मसल्स में कार को भी उठा सके इतनी शक्ति होती है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है कि जो हमें खुद इंजरी ना हो इसलिए हमें रुकाता है। जब कोई फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आता है तो अचानक से आप भी चौंकित हो जाओगे कि आप कितने तेज दौड़ सकते हो। या हमने कहानियां ऐसे सुनी होगी कि कोई बच्चा गाड़ी के नीचे फंसा तो माता या पिता ने भी गाड़ी को ढकेल के बाजू में कर दिया। तो खुद के लिए समय देना, खुद के थॉट्स में रहना, रिफ्लेक्ट करना उस चीजों पे, ये चीजें मुझे क्लैरिटी ज्यादा कर देती है, जिससे जैसा आपका सवाल था उससे मैं खुद को प्रोग्रेस कर पाता हूँ। और जैसे आप में से जितने सारे भी जन, मैं आशा करता हूँ आप में से हर एक जन कोई ना कोई खेल खेलते होंगे। जो खेल खेलता है उन्हें क्या कहते हैं? खिलाड़ू, स्पोर्ट्स पर्सन। सो आज का जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, हमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस तो जरूरत है, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड एज, बट उसी के साथ में हमें डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज भी होना चाहिए हमारे शरीर के लिए, ताकि हम फिट रह सके। बिकॉज जो हम सोचते हैं वैसे हमारे हाथों से या हमारे शब्दों से क्रिया होते हैं। जैसे हम खुद का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स भी वैसे डेवलप होते हैं। हम अगर हेल्दी रहेंगे तो हम हमारे माध्यम से, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड से एक पॉजिटिविटी फैला पाएंगे, हमारे चेहरे पे हमेशा वो ग्लो रहेगी। पर हम अगर खुद पर ही ध्यान अगर ना दे तो वो ग्लो भी हमारे ऊपर ना उतनी आसानी से नहीं दिखेगा। तो हमें कोई ना कोई छोटी ना छोटी एक्टिविटी जो आपको पसंद हो उसे कंटिन्यू हमें रखना है। जैसे बचपन में हम खेल खेलते थे, पर एक समय बड़ा होने के बाद में स्टडीज या फिर कोई व्यसन या कई सारे रीजन से हम स्पोर्ट्स से थोड़े दूर हो जाते हैं। आप जैसे, मेरा भी सेम था, मैं बचपन में बहुत साइकिलिंग करता था, मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था। स्टडीज के वजह से या फिर दूसरे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट मेरे होने के से मैंने जो चीज मुझे पसंद था साइकिलिंग उससे मैं दूर हुआ था। बट मैं खुद को जब कॉलेज में मेरा जाना हुआ तब मैंने वापस साइकिलिंग को डिस्कवर किया, साइकिल टू कॉलेज के माध्यम से। सो एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा क्यों ना कॉलेज को साइकिल से जाके देखूं, और मैं खुद चकित था कि जो 4 किलोमीटर का अंतर था मेरे घर से मेरे कॉलेज का, मैं साइकिल पे 5 से 5 मिनट ऑन एन एवरेज में जल्दी पहुंचता था। मुझे कन्वीनियंस भी ज्यादा मिलता था और मुझे खुशी इस चीज की मिलती थी कि जो एक्टिविटी मुझे करने में समय मुझे अलग से निकालना पड़ता तो मैं दिन में खुशी से 2 बार में कर सकता था। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते फिर आज जैसे लॉन्ग रेसेस मैंने ये सारे किए हुए हैं, तो फिटनेस जैसे साइकिलिंग ये स्पोर्ट को मैंने चुना, वैसे क्या पता आपके लिए कोई और स्पोर्ट वैसे हो सकते हैं।
बहुत सुंदर, थोड़े से शब्दों में अपने अनुभव के साथ उन्होंने अपना एटीट्यूड बताया कि कौन सा एटीट्यूड हम अपने साथ रखें जिससे हम अपनी जो हॉबी है या जो भी हम करना चाहते हैं जिस भी फील्ड में, उन्होंने अपना अनुभव साइकिलिंग के बारे में बताया, लेकिन हम ये सभी जगह लागू कर सकते हैं है ना, कि एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सेल्फ अवेयरनेस उन्होंने बताया, मेडिटेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है वो अपने अनुभव से बता रहे हैं। तो जब हम ये सब करने लगते हैं फिर धीरे धीरे अनुभव आता है। जो पहली बार मेडिटेशन करता है तो इतना अनुभव नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, कई बार तो नींद आ जाती है। कितने लोगों को मेडिटेशन के टाइम नींद आ जाती है, होता है? तो जब हम करने बैठते तो हमें ये क्या हो रहा है, हमें क्यों नींद आ रही है, और कई बार लगता है कि नींद आना ही मेडिटेशन है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में जैसे जैसे हम अनुभव करते जाएंगे सीखते जाएंगे तो ऐसे हमारे अशोक भाई जो है जो 27 सालों से मेडिटेशन का अभ्यास भी करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ी पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं, दोनों का बैलेंस करके आप चल रहे हैं, और यूथ विंग की जो सेवाएं हैं उसमें भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो पूरा डिजाइन किया है उसमें भी, ये जो रिट्रीट हम कर रहे हैं उसमें भी आपने एक्टिवली पूरा रोल अदा किया है। तो ये सारी चीजें करते हुए जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें बैलेंस करने में कैसे मदद करती है, और हमारी अंदरूनी शक्ति जिसको बोलते हैं, रेजिलियंट जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे बढ़ाती है, इसके बारे में आप बताएंगे।
हम लोग जब यूथ एज में है या लाइफ में है तो आई थिंक हमें दो रीति से चीजें को फेस करना है, या हम ऐसा करें जो हमारी लाइफ में कोई रिस्क ना आए, कोई ऐसा नेगेटिव बिहेवियर ना आए, कोई नेगेटिव बात ना हो, जो एक एक इट इज वन काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोटेक्टिव चीज है। आज हम बाहर जाते हैं तो मम्मी कहती है कि हेलमेट पहन लो, सर्दी या बारिश है तो हम छाता या उस प्रकार के वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो कहने का भाव है कि वो रिस्क को मिनिमाइज करना, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को, या हमारी ऐसी कोई परिस्थिति ना आए उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको हम मिनिमाइज करें। तो ये एक समझदारी, अवेयरनेस हमें सीखनी चाहिए। ये चीजें मोस्टली हमको सोसाइटी या पेरेंट्स हमको कहते हैं, खुद भी डेवलप करनी चाहिए, करते हैं जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है। लेकिन एक चीज मैंने सीखी या हम जो डेली लाइफ में करते हैं वो है कि रेजिलियंस या स्पिरिचुअलिटी को हम एक ग्रोथ मॉडल या डेवलपमेंट के लिए यूज करें। जब कोई भी एक नेगेटिव रिस्क बिहेवियर आता है या नेगेटिव बात होती है हमारे साथ, तो कोई ऐसी परिस्थिति सर्कमस्टांसिस आते हैं तो हम उसको एक ग्रोथ की तरह देखें। कोई एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। हमारे यहाँ पे हम लोग हम रोज यहाँ पे ज्ञान को सुनते हैं सुबह, अच्छे मोटिवेशन चीजें होती है वो, तो कहता है कि एग्जाम नहीं आएगी तो आप एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कैसे बढ़ोगे। तो या आप ऐसे काम करो या ऐसी चीजें आप अपने पास प्रोटेक्टिव मेजर्स रखो जो परिस्थितियां आए ही नहीं। जैसे हम एग्जाम की प्रिपरेशन पहले ही से ही करते हैं तो फेलियर आएगा ही नहीं, और फेलियर आ गया तो फिर आप उसको कैसे डील करोगे, वो चीज आपको फिर एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में आपको उसको लेना है और फिर उसको आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से हम हमारे स्पिरिचुअलिटी और रेजिलियंस को लेकर उसको इंक्लाइन करके इस चीज को हम फेस करें तो वो चीजें ठीक रहेगी। इसमें विशेषकर हमको एक एटीट्यूड हमारा हेल्प करता है कि यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी बातें सुनते हैं जिसमें हमें चीजें सुनाई जाती है कि भाई तो अब गिर गए हो तो खड़े हो जाओ वापस, भी गिरना हर कोई है तो गिरे हैं तो खड़े हो जाए, वापस काम करो, मतलब जब तक हम सक्सेस ना हो आप खड़े हो जाओ, वापस करो, अगर कोई गलती हुई है तो 10 गुना अच्छा काम करो जो आपको एक अच्छा इंटरनली अच्छी फील बात कराएं। तो इस प्रकार के एटीट्यूड हमें डेवलप करने पड़ेंगे कि जिससे हम अपने फेलियर को या कोई रिस्क है लाइफ में या नेगेटिव बातें हैं उसको हम डील कर सकें।
अशोक भाई, आपसे स्पेसिफिक अंदर से एक सवाल आया है जो श्रोता है वो पूछ रहे हैं, आपके जॉब रिलेटेड है, आप उसको जवाब देना चाहे तो ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आजकल जितना करप्शन है, फरेब है, तो ऐसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, अध्यात्म इसमें कैसे मदद करता है, तो आप जितना भी देना चाहे, क्योंकि इस स्टेज से हमें थोड़ा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा।
हर इंस्टीट्यूशन का, हर डिपार्टमेंट का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है, और हर जगह पे ये चीजें हैं, कोई भी जगह पे वो चीज को हम डिनाई नहीं कर पाते हैं, वो कोई भी हो, एक इंडिविजुअल हो, कोई एक इंस्टीट्यूट हो, और हमारी एक अंदरूनी शक्ति है वो हम अगर डेवलप कर लेते हैं तो हायर पर्पस के लिए हम काम करते हैं। तो एक चीज आपको हेल्प करती है कि आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग से चीजें, आपका मन या आप को वो चीजें सेटिस्फाई नहीं करती है, आपको एक ऊंचा पर्पज की ओर आप बढ़ते हैं, आप सेवाओं में जुड़ते हैं, आप भाव से, अच्छे भाव से। मैं हमेशा ऐसा फील करता हूं कि मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूं, मैं देश का बेटा हूं। मैं तो बेटा भी माँ बाप की या मॉम की सेवा करता है, मदर इंडिया हमारी माँ है। तो इट इज नॉट ए, जो हम किस एटीट्यूड से हम जाते हैं वर्क कल्चर में, दैट मैटर्स मच। और ये एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इन सब चीजों से बचाता है, और इन सब चीजों कुछ आती है चीजें तो भी आप उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं।
आशा करते हैं जिन्होंने पूछा था उनको क्लेरिफाई हो गया होगा, हमारा जो एटीट्यूड है वही हमारे हमारे खुद के ऊपर निर्भर है, हमें क्या करना है। पहले ही बताया है कि आसपास में जो भी वातावरण है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम क्या करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। तो भाई साहब ने बहुत अच्छे से बताया। अभी हमारे प्रोफेसर साहब जो है उनके लिए जो आप भाई साहब ने जी बताया, डॉक्टर साहब ने, कि राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग है, मां भारती हम बोलते हैं कि मां के लिए हम कर रहे हैं, जो एटीट्यूड बताया, तो ये जो रेजिलियंस है या आध्यात्मिकता जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं कि खुद को सशक्त बनाना है, तो समाज और देश निर्माण में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, आप उनके ऊपर हमें बताएं कि जब एक व्यक्ति खुद सशक्त बनेगा, रेजिलियंट होगा, तो समाज निर्माण और देश निर्माण में उसका क्या रोल रहेगा।
बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि युवा इस देश की रीढ़ हैं, और जब आप राष्ट्र निर्माण की या समाज निर्माण की बात करते हैं तो हम जो देखते हैं, हम जो समझते हैं, हम जिस ऑरा में रहते हैं, जिस समाज सोसाइटी में रहते हैं, वहीं से बातें निकलती हैं। और वो कंटेंट कहां से आता है? वो आता है सोशल मीडिया से आपके, क्योंकि सोशल मीडिया से अब कोई बच नहीं सकता है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसका इस्तेमाल 10 से 12 घंटे तो मिनिमम करते होंगे, अपवाद की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब आप उससे कंटेंट लेकर के जब आप राष्ट्र निर्माण और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, एक्स पर लिखते पढ़ते और खबरें साझा करते हैं, क्योंकि आप अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, वहां आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। नहीं तो आप क्या करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, हॉक्स, सटायर जैसी चीजों को आप पॉपुलेट करेंगे, आप शेयर करेंगे, उससे फिर एक नई चीज का निर्माण हो जाएगा और वो समाज को घातक कर देगी। देश में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजह से हुए, इन्हीं सोशल मीडिया की खबरों की वजह से या सूचनाओं की वजह से हुआ। तो आप क्या करें, राष्ट्र निर्माण तो होता रहेगा लेकिन आपको करना क्या है, मैं उस पर बात ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम महीने में 3 बार 4 बार अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करें, कम से कम अपने मोबाइल से आने वाली सूचनाओं को, उसका जो इको चैम्बर है उसको आप तोड़ के बाहर आएं। इको चैम्बर क्या होता है मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। आप अपने मोबाइल फोन पर YouTube देखते हैं या Facebook देखते होंगे तो आपको एक तरीके की सूचनाएं दिखती हैं, आपको लगता है कि देश पूरा एक ही विचारधारा का है, या देश में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, या हमारे मोहल्ले में सिर्फ यही खबरें चल रही हैं, एक तरीके का माहौल आपको दिखने लगता है। YouTube पर आप एक लाइन लिखिए कि या आप डिजिटल मार्केटिंग करते होंगे या कुछ सामान आप ऑनलाइन परचेज करते होंगे, तब आप देखिए कि आप टी शर्ट डालिए तो आपके पास टी शर्ट्स का ही सब कुछ दिखाने लगता होगा, आपको लगता है देश में सिर्फ यही बिक रहा है, या शूज बिक रहे हैं या कुछ और हो रहा है। ऐसे ही सूचनाएं होती हैं, आप यहां बैठे हैं माउंट आबू में तो आपको माउंट आबू के आसपास की सूचनाएं आ रही होंगी, आप कहीं और जाएंगे तो आपको वहां की सूचनाएं आ रही होंगी। तो ऐसी ही, अब कई बार सूचनाएं गलत हो सकती हैं, 99% गलत होने के चांसेस हैं, ऐसे में आप क्या करें, उसको चेक करना समझें, कैसे चेक करें, कैसे उसको वेरीफाई करें। और इसका नियम एक बहुत सीधा नियम है, आप अपने YouTube चैनल को 2 जीमेल आईडी से खोलिए और आप देखिए कि एक में आप डालिए लता मंगेशकर के सॉन्ग और एक में आप कुछ और डाल दीजिए तो आपको लगेगा आपका फोन एक है लेकिन चैम्बर अलग अलग हैं दोनों के, तो आपको वही चैम्बर तोड़ के दूसरे चैम्बर में जाना है। मैं क्या करता हूं, मैंने फिर पहले भी बताया कि मैं अपने इको चैम्बर को तोड़ने माउंट आबू आ जाता हूं, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के लोगों से मिलने लगता हूं, तो मुझे लगता है यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इतनी खुशहाली है, इतना लोग स्ट्रेस फ्री हैं। आप किसी से भी मिलिए, किसी भी बीके भाई बहन से मिलिए तो आपको लगेगा नहीं कि स्ट्रेस है, और ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं है। आप अभी हो कि जहां से आए हैं वहां स्ट्रेस था, आप माउंट आबू की ट्रेन से, आबू रोड की ट्रेन से जब उतरे हैं तब तक आपके पास स्ट्रेस था, और जब आप ऊपर चढ़े हैं इस कैंपस के प्रांगण में आए हैं तब आपको लगने लगा है कि रास्ता निकल सकता है। आप संयमित रहें, आप सेवा भाव अपने जीवन में लाएं, आप डिजिटली डिटॉक्स रहें और क्षमा करना सीखें। आपके अंदर क्षमा भाव नहीं रहेगा, और पर्पज ऑफ लाइफ, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, कमा के खाना सो जाना, समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपने कभी किसी गरीब को खाना खिलाया, किसी परिवार दूसरे परिवार को कभी किसी ने मदद की? वो मदद का भाव पैदा करना होगा, यही सब अध्यात्म है। अध्यात्म सिर्फ और सिर्फ आंख बंद कर लेने से नहीं आएगा, अध्यात्म अपने अंदर को पहचानने से आएगा, स्व आलोचना से आएगा। मुझे लगता है कि जब आप अपने जीवन में सब सोचने लगेंगे तो एक दृढ़ता भी आएगी और एक रास्ता निकलेगा। अभी लगने लगा है कि रास्ता नहीं है कुछ भी, यही मोबाइल एक रास्ता है आपके पास, आपके पास सिर्फ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ही एक रास्ता है, नहीं बहुत सारे और रास्ते हैं। अब इस संस्थान से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो यहाँ के राजयोग को ज्वाइन करिए, यहाँ के बहुत सारी किताबें हैं उनको पढ़िए, और यहाँ के लोगों से संपर्क में रहिए। जब आप संपर्क में रहेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ यहाँ के कोई भी बीके भाई बहन आपको वही बताएंगे जो सच होगा और सही होगा, तथ्यपूर्ण जानकारी ही आपको मिलेंगी, यही एक रास्ता मुझे नजर आता है। बाकी आप लोगों को
बहुत अच्छे से भाई साहब ने बताया, खुद को सुरक्षित रखना आज की दुनिया में जहां मिस इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड, फेक, बहुत सारा कुछ आपके पास आ रहा है, उसमें खुद को कैसे संभालना, अच्छे और सही लोगों के साथ जुड़े रहना, जिसमें हमारी ये ब्रह्मा कुमारी संस्था, भाई साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि जो सही है वही आपको यहाँ मिलेगा, और आप दो दिन से ये अनुभव भी कर रहे होंगे। तो अभी अंत की ओर हम जब जा रहे हैं, आप में से ही किसी के सवाल भी है साथ में वो हम दीदी को ही पूछेंगे। अभी तक हमने जो अनुभव सबके देखे कि जो हमारा आत्मविश्वास, इनर स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सभी वक्ता ने बताया कि मेडिटेशन का बहुत अहम रोल है, स्पिरिचुअलिटी का बहुत अहम रोल है, तो दीदी हमें विस्तार से इसके ऊपर बताएंगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या हेल्प करेगी, उसको हमें कैसे प्रैक्टिस में लाना है, उसी में जो चुनौतियां आती है उसमें ये चुनौतियों के ऊपर ही प्रश्न है, जैसे आजकल डिप्रेशन है, एंगर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, बहुत बढ़ गया है, और उसके वजह से फिर धीरे धीरे नशे की ओर युवा बढ़ते जा रहे हैं, नशा खूब बढ़ रहा है, तो एंगर या एंग्जाइटी से कैसे बचे और नशे से मुक्त कैसे हो, ये सवाल श्रोतागण से ही आया है, तो साथ में ही जोड़ते हुए हम दीदी से पूछेंगे कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में हम कैसे लागू करें खुद को एम्पावर करने के लिए, और ये जैसे बताया कि व्यसनों से मुक्त कैसे हो, एंगर एंग्जाइटी से कैसे बचे दीदी जी, और अंत में हमें बहुत सुंदर मेडिटेशन अनुभव भी दीदी करवाएंगी।
ओम शांति। एक बारी किसी ने दादी जी को प्रश्न पूछा था, हमारी दादी जानकी जी जो 104 की उम्र तक रही थी और फिर 2020 में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था. इज स्पिरिचुअलिटी अ रियलिटी? तो दादी ने जवाब में क्या बताया था कि क्या आपकी फीलिंग्स रियल है? जब हमारे फीलिंग्स में स्वच्छता, शुद्धता, सच्चाई, प्रेम भावना आती है तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी. द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज प्योर फीलिंग्स फॉर द सेल्फ, फॉर अदर्स. अभी इस चर्चा में कई बारी टॉपिक आई है पर्पस की, और आप देखेंगे नेचुरल किंगडम में, इस प्रकृति में आप देखेंगे एक एक चीज का अपना निज गुण है. एवरी ह्यूमन बीइंग एट द सेम टाइम हैज इट्स ओरिजिनल क्वालिटी. और जब हम थोड़ा सा ध्यान अंदर के और रखते हैं तो वो गुण जैसे इमर्ज होता है. टाइम देना पड़ता है. किसी के साथ भी आप संबंध रखना चाहते हैं, आप कहेंगे उसको मैं आपको बहुत प्यार करता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए, तो क्या वो मानेगा कि आप उसको प्यार करते? तो खुद के अंदर वो प्रेम की भावनाएं जागृत करनी है तो खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है. उसमें साइंस ने हमको बताया है कि जैसे आप सवेरे उठते हैं विद इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स जो भी आप संकल्प रचेंगे, जो भी आप फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, उसका एक पूरा मूड बन जाता है, सेट हो जाता है. सारे दिन का एक मूड सेट हो जाता है. अभी आप सवेरे के समय पे आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए, शुभ विचार करने के लिए, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने के लिए, और बस सीधा मोबाइल फोन को लेकर के फेसबुक, ट्विटर, तो यू आर गिविंग अवे योर पावर एट द बिगिनिंग ऑफ द डे. तो आपकी स्मृति में सारा दिन क्या रहेगा? जो भी आपने पढ़ा है वही रहेगा. तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ आपकी नहीं है, कोई और चला रहा है. तो द फर्स्ट प्लेस टू रिक्लेम योर फीलिंग्स एंड योर पावर इज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. क्योंकि हमको पता है मूड कितनी पावरफुल चीज है. आपका जब मूड अच्छा होता है तो जो भी आता है दिन में नो प्रॉब्लम. लेकिन जब मूड बिगड़ा हुआ होता है तो फिर क्या होता है, छोटी बात भी बड़ी लगती है. तो ये जो सवेरे का समय है जिसमें हमारे पास 10-15-20 मिनट के लिए हम खुद के साथ एक ऐसा शुभ वार्तालाप शुरू करें, एक आपको जो चीज, जो एक कुछ सीखने को है, कुछ एक ऐसा गुण धारण करना है पेशेंस का, उसके ऊपर रिसर्च करके उसी समय आप वो चीज के लिए पढ़ो, स्टडी करो, थोड़ा मेडिटेशन में बैठो. क्योंकि यू आर रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी एट द मॉर्निंग ऑफ द डे, तब उस लेवल पे आप मेंटेन कर सकते हैं. क्योंकि आपकी पूरी अंदर की इमानत आपकी संकल्प शक्ति है, आपकी फीलिंग्स है. तो दिन की शुरुआत में आप उसको हाथ में ले रहे हैं तो आपकी ही बनी रहती है सारे दिन पे, यू आर इन कमांड. लेकिन जब दिन की शुरुआत में आपने किसी और को दे दिया अपने फीलिंग्स, अपना ध्यान, अपने संकल्प शक्ति, यू आर नॉट इन कंट्रोल एनी मोर. तो ये जो सारी बातें आ रही है, क्या करें, मजबूरी की बातें, डिपेंडेंसी की बातें, अरे क्या करें, बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, ये गुलामी की बातें है. बिकॉज वी आर इन द मोड ऑफ बीइंग स्लेव्स. अधिकार छोड़ा है हमने. स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट रिक्लेमिंग योर सेल्फ सॉवरेंटी फ्रॉम इनसाइड. द पावर ऑफ योर थॉट्स, द पावर ऑफ योर फीलिंग्स, द पावर ऑफ योर डिसीजन मेकिंग, द पावर ऑफ योर एक्शन. आप नेचुरल दुनिया में देखेंगे सूर्य अपना काम करता है, उसको पता है उसको क्या करना है, उसको रोशनी देनी है, ठीक है। अभी जब बादल आता है तो सूर्य थोड़ी कंप्लेन करता है, अरे बादल मेरे सामने क्यों आया है, मैं अपना रोशनी बंद कर दूंगा। आने दो, बादल आएंगे जाएंगे, सूर्य अपना काम करेगा। अभी बाहर सूर्य की रोशनी हो रही है, हम अंदर रूम में बैठे हैं, सूर्य थोड़ी कंप्लेन कर रहा है कि मैं इतना काम कर रहा हूं, सारा दिन रोशनी दे रहा हूं, आप लोग अंदर बैठे हो। तो somehow we have lost connection with this natural gun inside कि मुझे क्या करना है, irrespective of anything else। स्पिरिचुअलिटी उस गुण के साथ कनेक्टिविटी कराता है। अभी मुझे ये जो मालिकपन की बात है, टू रूल योर सेल्फ, उसके ऊपर एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन कराना है। आर यू विलिंग? यस, ओके। सो यू बीन सिटिंग फॉर अ गुड आवर, माई रिक्वेस्ट इज यू प्लीज स्टैंड अप एंड सिट डाउन 3 times एट योर पेस। स्टैंड अप एंड सिट डाउन 3 times। ओके, अभी आप थोड़ा अलर्ट होकर के बैठिए। पुट योर नोटबुक एंड पेन टू वन साइड और हम थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। अभी थोड़ा गहरा श्वास लीजिए, होल्ड, धीरे धीरे श्वास को छोड़ो। दोबारा एक गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको छोड़ो। और तीसरी बार एक और गहरा सांस लीजिए और उसको धीरे धीरे छोड़ो। और जैसे आप सांस को छोड़ते हो, अपना पूरा ध्यान इस वर्तमान समय में एकाग्र करो। I am in this present moment now. और अपने सांस को ऑब्जर्व कीजिए। पूरा ध्यान अंदर के और लेके चलो और अपने सांस को ऑब्जर्व कीजिए। अभी उस ब्रेथ को फॉलो करके उसके स्रोत तक चले जाए। फील योरसेल्फ इनसाइड। कौन सी शक्ति है अंदर जो इस सांस को चला रही है, इस शरीर को प्राण दे रही है, जैसे पूरे शरीर में एक एनर्जी की करंट है, उसको महसूस कीजिए। अभी उस पूरी एनर्जी की करंट को विजुअलाइज करके सी इट राइजिंग अप, ऊपर आ रहा है, पैर से ऊपर, हाथ से ऊपर, छाती के थ्रू, अप थ्रू योर नेक, और इस ब्रुकटी के बीच में ये पूरी एनर्जी एकाग्र हो रही है। एक लाइट का सितारा बन जाता है। कॉन्सेंट्रेट ऑल योर एनर्जी into that ball of light। थोड़े समय के लिए अपना देह का नाम रूप से भी न्यारा बन जाओ और वो लाइट का गोला बन जाओ, कंप्लीटली फ्री. ये देह एक वस्त्र है और मैं अंदर इस देह को चलाने वाली एक शक्ति हूं. अभी अंदर मन में ये संकल्प क्रिएट करो कि मैं आत्मा, मैं चैतन्य शक्ति, शांत चित आत्मा हूं. 3 बारी इस संकल्प को दोहराओ मन में. मैं चैतन्य शक्ति, शांत चित आत्मा हूं. मैं चैतन्य शक्ति, एक शांत चित आत्मा हूं. फील योरसेल्फ इन द ड्राइविंग सीट, प्रकृति के बीच में. आपका सिंहासन है. आप इस देह के मालिक हो. अभी इस मालिकपन की स्मृति में अभी आप इस देह को ऑर्डर देंगे. मैं आत्मा, इस देह की मालिक, मैं अपने चॉइस से अभी 3 बारी इस देह को उठाती हूं और 3 बारी बिठाती हूं. तो इसी स्मृति में और इसी संकल्प को लेकर के आई द सोल चूज टू स्टैंड अप. I, the soul, choose to sit down. अभी आप 3 बारी उठो और बैठो इसी स्मृति में. जैसे बैठ गए वापस ब्रुकुटी के बीच में, अपनी शक्ति को एकाग्र कर लो और भूल जाओ. जो भी कर्म किया है भूल जाओ. बस एक लाइट का सितारा बन जाओ. फुल स्टॉप. फर्क पड़ा आपको? पहली बार आप जब उठे बैठे और दूसरी बारी आप जब उठे बैठे, क्या फर्क पड़ा आपको? क्या महसूस हुआ? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, यहां तक आवाज नहीं पहुंच रहा है. एनर्जी लेवल ज्यादा हुई और क्या? शांति का अनुभव और लाइटनेस, हल्कापन था. किसको हल्कापन महसूस हुआ? देखो, सेम एक्शन डन फ्रॉम योर सीट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट उसका नतीजा बिल्कुल अलग है। और वही एक्शन जो मेरे कहने से किया आपने, तो पावर किसकी हाथ में थी? पावर किसकी हाथ में थी? मेरे हाथ में थी ना। और मैं आपको यहां से चला रही हूं, आप उठो बैठो। कई लोग तो एक दूसरे को देख करके उठते थे बैठते थे, कई लोग अपने मजबूरी से, अरे बहन जी को क्यों हमको इतना उठा रही है बिठा रही है, ये क्या है इसका मतलब? रिएक्शन हो रहा था। तो 99% ऑफ योर लाइफ यू आर अ स्लेव टू समबडी एल्सेस डायरेक्शन, क्योंकि आपने अपनी सीट को धारण नहीं किया है। जैसे आप वो सीट को धारण करते हैं, बल कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको देवे, लेकिन आप अपने चॉइस से कुछ कार्य करेंगे, तो उसमें शांति, हल्कापन, फ्रीडम महसूस होता है। देन यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। तो यही है स्पिरिचुअलिटी, इज दिस, इज रिक्लेमिंग दैट सीट ऑफ सेल्फ सॉवरेंटी अगेन, ताकि जो भी आंतरिक गुण है आत्मा में, शांति की शक्ति है, प्रेम भावना है, लाइटनेस है, विजडम है, वो सरल रीति से बाहर प्रत्यक्ष हो, बिकॉज इट्स ऑल देयर। लेकिन हमको अपनी पोटेंशियल को महसूस क्यों नहीं, फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपने सीट पे नहीं बैठे हैं। दिस इज द लिटिल माइक्रो शिफ्ट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। सब कुछ चलाना नो प्रॉब्लम, कुछ भी होगा, जब सीट पे बैठते हो तो आप कुछ भी चला सकते हैं, धैर्यता से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से। तो मेरी ये शुभ आश है कि आप सभी इस बात को थोड़ा सीरियसली लेकर के, एटलीस्ट व्हेन यू लीव दिस रिट्रीट, यू विल हैव प्रैक्टिस्ड दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्योंकि ज्ञान तो बहुत सुना है, कहानियां बहुत सुनी है, लेकिन आपकी पावर आपके हाथ में आएंगे ओनली व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग सिटिंग ऑन योर सीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, ओम शांति।
दीदी जी ने हमें बहुत सुंदर अनुभव भी करवाया। किसी ने एक सवाल भेजा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन 3-4 दिन ठीक से चलता है, फिर फॉलो नहीं कर पाते। तो उनका जवाब भी आ गया। दीदी ने बताया खुद की सीट पर सेट रहेंगे तो जो भी करना चाहे हम अवश्य कर पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करें। दीदी ने बहुत अच्छा हमें ज्ञान युक्त और अनुभव से युक्त मेडिटेशन भी करवाया है। और सुबह का जो टाइम दीदी ने बताया, जब हम उठते हैं तो वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे हम जो करते हैं वो हमारे पूरे दिन का शेड्यूल मेंटेन करने में मदद करता है, हमारी मन की स्थिति को सेट करने में वो मदद करता है। तो आज बहुत सारा अनुभव युक्त ज्ञान हमें, मार्गदर्शन हमारे सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के द्वारा मिला है। आप सभी ने हम सभी को बहुत अच्छे से जो समझाया है, हम सभी भी प्रॉमिस करें कि हमें जो मिला है वो सब हम अवश्य हमारे जीवन में लागू करेंगे, मेडिटेशन को भी अपनाएंगे और हमारे जीवन की डोर हमारे हाथ में रखेंगे। जैसे लास्ट में दीदी ने अनुभव भी करवाया है, आप सभी ने समय निकाल कर सबको इतना लाभान्वित किया है, आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।